आप सबका यहाँ हार्दिक स्वागत है। शायद आप में से कई यहाँ इस मंदिर में सत्संग के लिए पहली बार आ रहे हैं। ऐसे आप में से कितने भक्त हैं जो यहाँ सत्संग के लिए पहली बार आ रहे हैं, कृपया हाथ ऊपर कीजिएगा। तो कई हैं, तो आप सबका भी स्वागत है। आशा करते हैं कि आप यहाँ राधा गोकुल आनंद मंदिर में बार बार आते रहेंगे। ये भी आप सबका घर है, हमारा घर यानी हमारे पिताजी का घर। हमारे पिताजी कौन हैं? पधारे हैं, श्री कृष्ण विराजमान है यहाँ पर। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनि अहम बीज प्रदह पिता। वो न केवल हमारे पिता हैं, सारे प्राणियों के पिता हैं। भगवान श्री कृष्ण यहां पर विराजे हैं, श्रीमती राधा रानी के साथ में खड़े हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, हम सबको निमंत्रण दे रहे हैं कि आइए आइए मेरे मंदिर में आइए। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में आकर क्या लाभ हमें मिलेगा? ये मंदिर नहीं है केवल, ये इस दुनिया का भाग नहीं है। बाहर दुनिया में आपको कई तरह की चीजें सिखाई जाती हैं, कई तरह की चीजें आप देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन यहां जो चीजें की जाती हैं वो बिल्कुल अलौकिक हैं, अलग हैं। यहां पे कौन सी चीजें की जाती हैं? अभी अभी आपने भाग लिया भगवान का सुंदर दर्शन, भगवान के नाम का संकीर्तन, भगवान की कथा, भगवान के ग्रंथों के बारे में चर्चा, भगवान के विभिन्न सेवाएं यहां पर उपलब्ध हैं। आप सब आके यहां तरह तरह के सेवा कर सकते हैं। तो ये भगवान का धाम है, ये एक साधारण मंदिर नहीं है। वैसे देखा जाए तो हमारे देश में बहुत सारे मंदिर हैं, गली गली में कोने कोने पर मंदिर है। ये भी एक अच्छी बात है, इससे पता चलता है कि हमारे देश में आध्यात्मिक या धार्मिक संस्कृति अभी तक कितने सख्ती से जुड़ी हुई है, कितने करोड़ों करोड़ों सालों का इतिहास है हमारा, जिनका वर्णन हमारे शास्त्रों में किया हुआ है। लेकिन आजकल देखा जाता है कि जब लोग मंदिरों में जाते हैं तो केवल वो दर्शन करते हैं, सर झुकाते हैं, हो सकता है दो शब्द या दो बार कुछ भजन कीर्तन कुछ करते हैं, चले आते हैं। परंतु सच्चा मंदिर तो वो है जहां पे हमें प्रशिक्षण मिले, हमें उपदेश मिले। एक सच्चा मंदिर तो वो है कि एक विश्वविद्यालय या पाठशाला के बराबर हमें अच्छे कुछ बातें सीखने को मिले, जिससे हमारा जीवन बदल जाए, हमारा जीवन सुधर जाए, जिससे हमें सच्चा ज्ञान मिले। कौन सा ज्ञान? आप कहेंगे ज्ञान तो पाठशाला में मिलता है, कॉलेज में मिलता है। तो यहां जो पाते हैं ज्ञान, उसमें और पाठशाला के ज्ञान में अंतर क्या है? वहां भी विद्या मिलती है, इसलिए उसे विद्यालय कहते हैं। परंतु वहां की जो विद्या है वो क्या है? वो इस दुनिया की विद्या है। गणित सिखाया जाता है, भूगोल, इतिहास, मराठी, कन्नड़, हिंदी, अंग्रेजी, ये दुनिया का जो भी ज्ञान है सिखाया जाता है। परंतु इस मंदिर में आपको वो विद्या दी जाएगी जो कि इस दुनिया के परे है, जिस ज्ञान को किसी भी पाठशाला में या विश्वविद्यालय में नहीं सिखाया जाता है। भगवद गीता के 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें यह भगवद गीता सुना रहा हूं, ये कोई साधारण ज्ञान मत समझना, ये केवल विद्या नहीं है, ये राज विद्या है, विद्याओं का राजा है ये। राज गुह्यम, ये ज्ञान बहुत गुह्य है, गोपनीय है। पवित्रम इदम उत्तमम, ये पवित्र है, पवित्र ज्ञान है। पवित्र ज्ञान मतलब जो हमें भी पवित्र कर सकता है। इदम उत्तमम, उत्तम मतलब क्या है? तम, तम मतलब अंधकार, अंधकार मतलब अज्ञान। तो ये दुनिया अंधकार या अज्ञान की जगह है, इसलिए लाइट चले जाते हैं, जनरेटर लगाना पड़ता है, जनरेटर भी चले जाता है, खराब हो जाता है, है ना? और अंधकार को मिटाने के लिए यहां पर जनरेटर चाहिए, बिजली चाहिए, सूरज चाहिए। तो वैसे देखा जाए तो ये ब्रह्मांड एक अंधकार का स्थान है। कृत्रिम रूप से कोई एक रोशनी किसका स्रोत चाहिए रोशनी देने के लिए। तो हमारा जन्म ही अंधकार में हुआ, मां के गर्भ में जब हम थे अंधकार में थे, अज्ञान में थे, और मां के गर्भ से जन्म लेने के बाद भी हम अज्ञान में ही रहते हैं। भले हम कितने बड़े बड़े विश्वविद्यालयों से बड़े बड़े डिग्री क्यों ना प्राप्त करें, जब तक हमें यह राज विद्या नहीं मिलता तब तक शास्त्रों की दृष्टि से कहा जा सकता है कि हम अज्ञान के अंधकार में ही हैं। और ये तम है, तम मतलब अंधकार। तो उत्तम जो हमें इस अज्ञान के अंधकार से परे ले जा सकता है, इससे मुक्त कर सकता है, हमारे अज्ञान की स्थिति में जो हमको ज्ञान का प्रकाश दिला सकता है, वो है ये राज विद्या। पवित्रम इदम उत्तमम, तो ये राज विद्या धर्म का मार्ग है। प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम, और जैसे जैसे आप ये राज विद्या आपके जीवन में प्राप्त करेंगे, प्रत्यक्ष इसका अनुभव करेंगे आप। ये केवल बात करने की चीज नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष अनुभव करने वाली चीज है। और जब आप भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, इस राज विद्या को अपने जीवन में स्वीकार करेंगे, तो क्या होगा? सुसुखम कर्तुम अव्ययम, आपका जीवन बड़ा सुखी हो जाएगा। तो यहां पर इस मंदिर में आपको ये राज विद्या मिलेगा। दुर्भाग्यवश बहुत कम स्थान ऐसे हैं जहां भगवान श्री कृष्ण की वाणी अर्थात भगवत गीता जैसे है वैसे सुनाया जाता है, दोहराया जाता है। वैसे भगवत गीता तो बहुत सरल है, कोई भी समझ सकता है, परंतु हमें सही स्थान से, सही संप्रदाय, सही परंपरा से सुनना चाहिए, जैसे है वैसे सुनना चाहिए, फिर हमारा सारा अज्ञान दूर हो जाएगा। जब अज्ञान होता है तब दुख भी होता है, संशय होता है, भय होता है, चिंता होती है। अब सोच लीजिए कि बेलगाम के सारे लाइट चले जाते हैं तो आपको घर जाने में मुश्किल हो जाएगा। आप सोचेंगे अरे रास्ते में कहीं गड्ढा तो नहीं है, हम कहीं गिर तो नहीं जाएंगे नीचे। तो इस तरह से जब अंधकार होता है तब भय, संशय, चिंता ये सब उत्पन्न होते हैं। इसीलिए ये संसार में सभी लोग चिंतित हैं, सभी लोग भयभीत हैं, सभी लोग दुखी हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान का प्रकाश नहीं है, अज्ञान के अंधकार में है, इसलिए सब जगह दुख ही दुख, कष्ट ही कष्ट है। तो यहां पर जब हम आकर भगवत गीता का संदेश सुनेंगे, ये राज विद्या को ग्रहण करेंगे, तो इस अंधकार से बाहर निकलने का मार्ग मिलेगा। दुख से सुख के मार्ग में आने के लिए हमें वो चाबी मिल जाएगी। तो ये है मंदिर, सच्चा मंदिर। और ऐसे मंदिर में आके हम भक्तों के संग में श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं, सुनते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तरह तरह की सेवा करते हैं, तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। और जब हृदय शुद्ध हो जाता है तो सच्चा आनंद हृदय में आ जाता है। ये दुनिया में कितना दुख है, कितना कष्ट है। आप सब अपना अपना संसार चलाते हैं, आपको कैसा लगता है? संसार में दुख है ना? बहुत बहुत है ना? संसार भगवान ने ऐसे ही बनाया है, कदम कदम पर दुख, चिंता, क्लेश, कष्ट। भगवान कहते हैं ये दुख का आलय है, तो यहां आपको सुख कहां से मिलेगा? सुख आपको पैसे में नहीं मिलेगा, सुख आपको गाड़ी बंगले में नहीं मिलेगा, सुख आपको मान प्रतिष्ठा में नहीं मिलेगा, केवल ये राज विद्या से ही आपको सुख मिल सकता है। इसलिए इस जगह आकर जब आप अच्छी तरह से श्रवण करेंगे और अपने जीवन में इसको अमल करेंगे, उतारेंगे, तब आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। वैसे राज विद्या में भगवान श्री कृष्ण क्या सिखाते हैं? वो सिखाते हैं कि हम आत्मा हैं, हम अमर हैं, हम ये शरीर नहीं हैं। और भगवान श्री कृष्ण ये सिखाते हैं कि वह स्वयं भगवान हैं। और वे ये भी सिखाते हैं कि हमारे और उनके बीच में जो संबंध है वो प्रेम का संबंध है, भक्ति का संबंध है। और इस संबंध को पुनः जागृत करना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है और यही सच्चा धर्म है। हम सब भगवान को ढूंढ रहे हैं। हमारे संस्थापक आचार्य, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य शीला ए अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, वो कहा करते थे कि दुनिया में सभी लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं, केवल इतना है कि थोड़े लोग जानते हैं, थोड़े लोग नहीं जानते हैं कि वो भगवान को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वास्तव में सभी ढूंढ रहे हैं। एक बार एक व्यक्ति था, उसके मन में ये इच्छा हुई कि मुझे एक किसी बड़े आदमी का की सेवा करनी है। तो बड़ा आदमी कौन है? वो तो एक छोटा आदमी था, वो गांव में रहता था। तो उसने सोचा सबसे बड़ा आदमी गांव में कौन है? सरपंच है। तो मैं सरपंच के साथ में जाऊंगा और उसकी सेवा करूंगा, क्योंकि वो आदमी कभी गांव के बाहर गया ही नहीं था, उसको पता ही नहीं था कि गांव के बाहर क्या होता है। तो उसके अनुभव में तो सरपंच ही सबसे बड़ा आदमी था। तो सरपंच के पास गया और सरपंच से कहने लगा कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, आप तो बहुत बड़े आदमी हैं। तो सरपंच ने कहा ठीक है, मेरी सेवा में आ जाओ। तो कई दिनों तक उस व्यक्ति ने सरपंच की सेवा की, परंतु वो देखता था कि ये सरपंच भी कहीं जाता है। तो पूछा कि अरे आप कहां जा रहे हैं? मैं देखता हूं कि आप हफ्ते में 4-5 बार कहीं जाते हैं। तो कहने लगे कि मैं जाता हूं तहसीलदार के पास। अच्छा, ये तहसीलदार कौन होता है? आपसे भी बड़ा है क्या? हाँ, मेरे से भी बड़ा है, तो मैं उसकी सेवा करना चाहता हूं। क्योंकि इस व्यक्ति के मन में इच्छा थी कि बड़े से बड़े व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए, सबसे बड़ा व्यक्ति जो है उसकी सेवा करनी चाहिए। तो फिर सरपंच ने कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो तुम्हारी पहचान करा देता हूं। और फिर वो व्यक्ति तहसीलदार की सेवा में लग गया। फिर वो देखने लगा कि ये तहसीलदार भी कहीं जाता है, आप कहां जाते हैं? हम तो जिला के अधिकारी हैं, उनके पास जाते हैं। अच्छा, आपसे भी बड़े हैं वो? हाँ, हमसे भी बड़े हैं, तो हमें उनकी सेवा करनी है। ठीक है, चलो। तो उनकी सेवा करने लगे। अब जिलाधिकार भी उनकी सेवा में थे तो वो भी कहीं जाते थे। आप कहां जाते हैं? मैं भी राज्यपाल की सेवा करने जाता हूं। ये राज्यपाल कौन होता है? हाँ, हमसे बड़े आदमी है, तुम्हें तो उनकी सेवा करनी है। राज्यपाल के पास गए, राज्यपाल भी कहीं जाते थे, जाकर देखा कि ये राजा है। तो फिर अब उनको पता चला, जाने के पहले उन्होंने राज्यपाल से पूछा कि देखो इनसे बड़े तो और कोई नहीं है ना, अब बहुत मैं घूम चुका हूं इधर से उधर, अब ये बताओ कि ये राजा ही तो सबसे बड़े आदमी है ना? तो राज्यपाल ने कहा हाँ, राजा से बड़ा तो कोई नहीं है, ये राज को संभालते हैं। तो राजा के दरबार में जाके उन्होंने सेवा आरंभ की। कई दिन बीत गए, लेकिन ये आदमी देखता था कि राजा भी हर रोज सुबह कहीं कहीं जाता है जंगल में। अरे ये राजा कहां जाते है, वो भी जंगल में? तो एक दिन उनके पीछे पीछे गए, तो देखा राजा अकेले जंगल में जा रहे हैं। और जंगल में जाकर वहां देखा कि एक वहां एक इमारत है। कैसी इमारत है? और एक शिखर जैसा है। और ये राजा वहां जा रहे हैं और सामने कुछ है, और अब पूरा जमीन पर लेट गए। अरे ये क्या कर रहे हैं राजा, क्यों सो गए राजा यहां पर? तो गहराई से राजा को देखा फिर राजा जब उठे तो उस व्यक्ति ने राजा से पूछा, ये आप क्या कर रहे थे? मैं नमस्कार कर रहा था, प्रणाम कर रहा था। किसको? भगवान को। भगवान ये कौन होते हैं? ये सब आपसे भी बड़े हैं? हाँ, भगवान तो मेरे से बड़े हैं, भगवान तो सबसे बड़े हैं, भगवान से बड़ा कोई नहीं है। देखो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण है और ये भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है और यही भगवान कृष्ण अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं, उनके स्वामी हैं, तो तुम भी इनके शरण में आ जाओ। तो व्यक्ति ने सोचा फिर मैं राजा की सेवा करके क्या करूंगा, तो फिर उन्होंने राजा की सेवा छोड़कर वहां भगवान कृष्ण की सेवा स्वीकार की। भक्तों के संग में वहां जहां भगवान होते हैं वहां भक्त भी आते हैं, तो वहां भक्त लोग आया करते थे, भजन करते, कीर्तन करते, कथाएं होती वहां पर। तो इस तरह से व्यक्ति भगवान कृष्ण की सेवा में लग गया और इस तरह से अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण किया। हम में से सभी ऐसे ही सेवा करना चाहते हैं, हम ढूंढ रहे हैं किसकी सेवा करें, लेकिन ज्ञान नहीं होने की वजह से हम ये ठीक से पहचान नहीं पा रहे हैं कि हमें सीधे यहां भगवान कृष्ण के पास आना है, क्योंकि उनसे बड़ा कोई नहीं है, वही परम सत्य है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, महि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं परम सत्य हूं इस दुनिया में, मेरे से श्रेष्ठ कोई भी सत्य नहीं है, सब कुछ मुझ पे आधारित है। जिस तरह से एक धागे के ऊपर मोतियां आधारित रहते हैं, हालांकि हम धागे को देख नहीं सकते, परंतु हम जान सकते हैं कि धागा है, ठीक उसी तरह से हालांकि हम भगवान श्री कृष्ण को इस सृष्टि में देख नहीं सकते हैं, फिर भी हम जान सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही इन सब चीजों के आधार हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के शरण जाकर हम अपने जीवन के संसिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को तो हम इन आंखों से बाहर तो नहीं देख सकते, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर भगवान उपस्थित नहीं है। भगवान हर एक अणु में है, भगवान हर एक प्राणी के हृदय में है, लेकिन इन जगहों में हम भगवान को देख नहीं सकते। हमारे दूरबीन से, हमारे चश्मा से, ऐनक से, हमारे यंत्रों से, इन स्थानों में हम भगवान को नहीं देख सकते, क्योंकि हमारा हृदय शुद्ध है, अशुद्ध है, केवल शुद्ध आंखों से हम भगवान को देख सकते हैं। तो भगवान बड़ी कृपा करके एक ऐसा सुंदर रूप धारण करते हैं, बांसुरी बजाते हुए वो नीचे आ जाते हैं, ये भगवान का नित्य रूप है। भगवान ऐसे ही हैं जैसे हम यहां पर मूर्ति के रूप में देख रहे हैं, ये कोई काल्पनिक रूप नहीं है। जैसे भगवान का असली रूप है, मूल रूप है, वैसे के वैसे यहां पर भगवान विराजे हुए हैं। तो भगवान बड़ी कृपा करके यहां पर पधारते हैं हम सबके लिए, क्योंकि कम से कम यहां पर आके तो हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। जब हम हर अणु में नहीं देख सकते, हर प्राणी के हृदय में भगवान को नहीं देख सकते, तो कम से कम यहां मंदिर में आके भगवान का दर्शन हम कर सकते हैं इन आंखों से। तो ये है भगवान की कृपा, इसलिए हमें भगवान के मंदिर में आना चाहिए। और केवल आकर दर्शन करना इतना काफी नहीं है, आके यहां भक्तों का संग प्राप्त करना चाहिए। जैसे कि विद्यार्थी घर में भी पढ़ाई करते हैं और स्कूल में भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि माता पिता कहेंगे कि हम तुमको केवल घर में ही पढ़ाएंगे, स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे कोई माता पिता नहीं कहते। घर में तो पढ़ाते ही हैं बच्चे को, साथ साथ विद्यालय में भी भेजते हैं। विद्यालय में जाने का क्या फायदा है? वहां पर अच्छी तरह से शिक्षा मिलती है, उपदेश दिया जाता है, बड़े योग्य प्रशिक्षित अध्यापक वहां रहते हैं जो अच्छी तरह से बच्चे को सिखा सकते हैं। और इसके अलावा बच्चे के साथ साथ अन्य कई बच्चे रहते हैं जो उनके साथ में सीखते हैं, तो इससे बच्चे को अच्छा लग जाता है। ठीक उसी तरह से हम जब भगवान श्री कृष्ण के ऐसे मंदिर में आते हैं, तो हम सच्चा ज्ञान सुन सकते हैं, हमें आध्यात्मिक जीवन में प्रशिक्षण मिल सकता है और अन्य भक्तों के संग में हमें प्रेरणा मिल सकती है। नहीं तो हमें लगेगा अरे हम अकेले क्या करेंगे, लेकिन जब हम दूसरे लोगों को देखते हैं अरे ये भी हमारे जैसे ही हैं, ये भी गृहस्थी में हैं, ये भी अपना जीवन चला रहे हैं, ये भी अपना व्यवसाय कर रहे हैं, घर को संभाल रहे हैं, तो हम भी कर सकते हैं। अगर ये लोग भगवान की भक्ति करते हैं तो हम भी कर सकते हैं। इससे प्रेरणा मिलती है, भक्तों के संग में दोस्ती हो जाती है। इसलिए आप सब कृपा करके यहां पर आइएगा, बार बार आइए। ये आपका ही मंदिर है, आपका घर है। यहां पे आके आपको सच्ची मन की शांति मिलेगी, सच्चा आनंद मिलेगा। जैसे हम पहले कह रहे थे, ये मंदिर इस दुनिया का हिस्सा नहीं है, ये एक भगवान के धाम का टुकड़ा है। इस संसार के, इस जगत के भीतर भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। आप आके जाके आसमान में देखिए, कितने तारे, कितने ग्रह, बहुत विशाल है ये ब्रह्मांड। कितना विशाल है इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। लेकिन भगवान कृष्ण बताते हैं कि ये ब्रह्मांड भी नश्वर है, बहुत कम समय तक रहेगा। ये ब्रह्मांड जो है थोड़े समय के लिए रहता है, फिर इसका नाश हो जाएगा, फिर से इसका सृजन होगा, फिर से नाश हो जाएगा। इस तरह से ये ब्रह्मांड जो है ऐसे चक्र में है, सृष्टि स्थिति प्रलय। तो ये ब्रह्मांड एक ही ब्रह्मांड है, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है भगवान कृष्ण बताते हैं। और ये सारे ब्रह्मांडों का नाश होता है, उनका सृजन होता है, उनका पालन होता है, और इन अनंत कोटि ब्रह्मांडों में से हमारा एक ब्रह्मांड है। हमें ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा लगता है, परंतु दूसरे ब्रह्मांडों की तुलना से ये बहुत छोटा है। तो भगवान श्री कृष्ण इतना सब ज्ञान देने के बाद गीता में अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जान लो कि इन अनंत कोटि ब्रह्मांडों के परे भी और एक जगत है, और वो जगत कौन सा है? वो मेरा धाम है। परस्तस्मात् भावोन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातनः, यह सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। भगवान कहते हैं कि इन ब्रह्मांडों के परे एक और धाम है हे अर्जुन, और वो मेरा धाम है। और वो धाम की खूबी ये है कि वो नष्ट नहीं होता है। ये जो भौतिक जगत है, ये जो ब्रह्मांड है, इनका नाश हो जाता है, परंतु मेरे धाम का नाश नहीं होता है अर्जुन। मेरा धाम तो शाश्वत है, सनातन है, अमर है। तो ऐसे भगवान के धाम में भगवान निवास करते हैं, और बीच बीच में वो अवतार लेकर यहां भौतिक जगत में आते हैं हम सबका उद्धार करने के लिए। तो भगवान का धाम शाश्वत अमर होने के नाते आनंद से पूर्ण भी है। सब कुछ वहां अनंत है। यहां चीजों का क्षय होता है, चीज समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, लेकिन भगवान के धाम में सब चीज की वृद्धि होती रहती है। इसके बारे में एक सुंदर कहानी आपको सुनाएंगे। एक बार, बहुत पुराने समय की बात है, एक गुरुकुल था। आप तो जानते हैं कि पुराने जमाने में बच्चे अपने गुरु के साथ पाठशाला में, गुरुकुल में रहा करते थे। तो ये बच्चे अपने अपने घर में बीच बीच में जाया करते थे, और जब उनकी पढ़ाई हो जाती थी तो गुरु के लिए कुछ दक्षिणा देकर वो अपने जीवन बिताया करते थे। तो एक बार ऐसे हुआ कि गुरु ने सोचा कि हमें कोई एक उत्सव मनाना है, तो अपने शिष्यों से कहा कि जाओ अपने अपने घर और घर से कुछ दक्षिणा लेकर आओ। तो सारे विद्यार्थी अपने अपने घर में चले गए। इनमें से कई बच्चे अमीर घराने के थे, तो उनके माता पिता ने उनको बहुत अच्छी अच्छी दक्षिणा दी। किसी ने सोने के सिक्के दिए, किसी ने बहुत कुछ अच्छे अच्छे चीजें दिए। लेकिन ये एक लड़का था, ये एक लड़का बहुत गरीब था, और उसकी एक माँ ही थी बस, और कोई नहीं था उसके साथ। और माँ बहुत गरीब, वो भी अकेली रहती थी छोटे से गांव में। तो ये बच्चा जब अपने माँ के पास आया, पूछने लगा कि माँ मेरे को गुरु के लिए दक्षिणा चाहिए। तो माँ ने कहा, अरे बेटा मैं तुमको क्या दे सकती हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, देखो घर तो खाली पड़ा है। और वाकई वो बहुत गरीब थे, लेकिन वो जो महिला थी वो भगवान की भक्त थी। तो उसने अपने बेटे से कहा कि जाओ तुम भगवान से मांगो, मैंने सुना है कि जो गोपाल हैं वो अपने सारे इच्छाओं को पूरी करते हैं, उनका नाम है दीन बंधु, दीनों के बंधु हैं वो। अच्छा, ये दीन बंधु हैं, ये मुझे देंगे मुझे जो चाहिए? हाँ अवश्य देंगे, तुम दीन बंधु से मांगो, दीन बंधु तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर देंगे। तो ये कहाँ मिलेंगे दीन बंधु? देखो बेटा, मैंने सुना है कि ऋषि मुनि ये सब जंगल में जाया करते थे, और वहां जाकर दीन बंधु मिल जाएंगे तुमको। तो लड़का जंगल में गया, घना जंगल बहुत, लेकिन आप तो जानते हैं कि बच्चे जो होते हैं बड़े मासूम होते हैं, बड़े जल्दी से उनको श्रद्धा बैठ जाती है, हम सब बड़े लोगों की तरह नहीं। हमें कुछ सुनाया जाता है, बोला जाता है, तो हमारे मन में 100 प्रश्न उत्पन्न होते हैं, ये सही बोल रहे हैं कि नहीं, कैसे मालूम, इसके पीछे कोई और बात है कि नहीं है, क्या सबूत है, क्या प्रमाण है, कैसे जान सकते हैं, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। तो ये संसार में रहकर हमारा दिमाग जो है बहुत कठिन हो गया है, श्रद्धा बैठती नहीं है हमें, लेकिन छोटे बच्चे होते हैं आसानी से श्रद्धा उनमें उत्पन्न हो जाती है। छोटे बच्चे को यहाँ लाइए, बोले ये भगवान है, नमस्कार करो, आराम से नमस्कार करेंगे। कई ऐसे लोग हैं उनको बुलाइए मंदिर में, आइए भगवान है नमस्कार कीजिए, नमस्कार नहीं करेंगे। तो ये बच्चा था जंगल में गया, अपनी माँ को माँ की बात को अच्छी तरह से स्वीकार किया और जोर से बोलने लगा, अरे दीन बंधु कहाँ हो, ऐसे बहुत बहुत पुकार पुकार के थक गया बेचारा, और थक के आके निराश हो गया, निराश होके रोने लग गया और बोलने लगा कि दीन बंधु कहाँ हो, मेरी माँ ने बोला था कि यहाँ तुम रहते हो और सबके बंधु हो, तो क्यों नहीं आ रहे हो मेरे पास? उस समय अचानक झाड़ियों के बीच में से कोई आवाज आई और वहां से और एक सुंदर लड़का आया बाहर। तो इस लड़के ने देखा, अरे ये तो एक अच्छा लड़का आया, मेरा मित्र है शायद, और देखा इसका रूप बड़ा सुंदर था, सांवला रंग था, कमल जैसे आंखें थी, उसके सुंदर दांत थे मोतियों के जैसे, और अपने काले काले बाल में एक मोर पंख था और एक पीतांबर पहना हुआ था। तो फिर उस लड़के ने आके कहा, अरे मैं आ गया। अच्छा तुम्हारा नाम दीन बंधु है? हाँ मेरा नाम दीन बंधु है। अच्छा बहुत अच्छी बात, चलो अच्छा हुआ तुम आ गए, कितने समय से मैं तुम्हें पुकार रहा था, मेरी माँ ने कहा था कि जंगल में जाके दीन बंधु को पुकारो, दीन बंधु तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर देंगे। तो फिर दीन बंधु ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए? तो अपनी समस्या बताई उस लड़के ने। तो दीन बंधु ने कहा, बस इतना ही है, ये ले लो, मैं तुम्हें एक भेंट देता हूं दक्षिणा के लिए, जाके तुम्हारे गुरु को दे दो। और वो भेंट क्या था? एक छोटी सी कटोरी थी और उस कटोरी में दही था। अब कोई साधारण आदमी होता सोचता, अरे ये मैं कैसे दक्षिणा में दे सकता हूं, कुछ देना है तो कुछ अच्छी बात देनी चाहिए। लेकिन ये बच्चे ने बड़े श्रद्धा से इस दही को स्वीकार कर लिया और फिर अपने गुरु के पास गया। और गुरु के पास इतने अच्छा इतना दक्षिणा लोगों ने बच्चों ने अच्छे अच्छे लाए थे, और ये लड़का जब आया और छोटा सा दही छोटी सी दही की कटोरी दे दी, तो गुरु को बड़ा गुस्सा आया, पर ये क्या है, ये कोई दक्षिणा है क्या, मजाक कर रहे हो मेरे साथ में, ये दही दक्षिणा के रूप में लाए हो, नहीं चाहिए मुझे। तो जैसे नहीं चाहिए कह दिया, तो दोनों के हाथ से वो कटोरी गिर गई और दही बाहर निकल गया। और जब वो बच्चे ने जल्दी से वो कटोरी उठा दी, तो क्या देखते हैं कि कटोरी फिर से दही से भर गई है, जमीन पर भी दही है जो गिर गया था, और कटोरी भी भरी हुई है। तो आश्चर्य हो गया गुरु को, दिखाओ तो दिखाओ। और हाथ में लिया, फिर से वो कटोरी फिसल गया, फिर से गिर गया, फिर से दही बाहर निकल गया, और जब उठाया तो फिर से दही भरा हुआ है इसमें। ऐसे और एक बार हुआ, तब गुरु को पता चला कि ये कटोरी कोई साधारण कटोरी नहीं है, ये दही भी कोई साधारण दही नहीं है, और ये बच्चा भी कोई साधारण बच्चा नहीं है। तब उसने बच्चे को बुलाया, बैठो बच्चे, बोलो ये कहां से लाए तुम कटोरी? शास्त्रों को पढ़ा हुआ था उन्होंने, गुरु ने, तो वो जानते थे कि ये तो एक अलौकिक चीज है, बोलो कहां से तुम्हें ये मिला? तो कहा मेरे मित्र ने दिया। मित्र का नाम क्या है? दीन बंधु। अच्छा, दीन बंधु कैसे दिखता है? तो वर्णन किया उस बच्चे ने। उस समय गुरु को समझ में आया कि अरे ये तो साक्षात श्री कृष्ण आए, और श्री कृष्ण ने ये भेंट इस लड़के को दे दिया मुझे देने के लिए। कितना भाग्यशाली है ये लड़का, और मैं इसके ऊपर गुस्सा हो गया। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसा शिष्य मिला है जिसने साक्षात भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया है, और जिसके लिए स्वयं भगवान कृष्ण उपस्थित हुए उसकी समस्या का समाधान करने के लिए। और फिर उसने उस बच्चे का आलिंगन किया, तो गुरु जान गए कि ये जो दही की कटोरी है ये इस जगत की नहीं हो सकती है, वो उस जगत की होगी जहां श्री कृष्ण निवास करते हैं, जिसको वैकुंठ धाम कहते हैं। इस जगत को कुंठ कहते हैं, जो चिंता या भय से दुख से भरा हुआ है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो धाम है वो वैकुंठ है, जहां कोई कष्ट नहीं, कोई तकलीफ नहीं, वहां आनंद ही आनंद है, वहां सब कुछ बढ़ते रहता है, किसी भी वस्तु का घटन वहां पर नहीं होता, केवल वृद्धि होती है। ठीक उसी तरह से वहां पर आनंद की वृद्धि भी होती है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम, तो हर पदम हर कदम पे वहां पर आनंद बढ़ते रहता है। तो ये है भगवान श्री कृष्ण का धाम, ये है भगवान श्री कृष्ण, और ये है भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति या प्रेम करने का लाभ। हमें उस धाम की प्राप्ति हो सकती है जिस धाम में जाकर हमें यहां इस दुख भरे संसार में कभी भी लौट के आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये संसार तो दुख का सागर है। पदम पदम यद विपदाम नतेषाम, हर कदम पर खतरा है, धोखा है। कितने आपत्तियां हमारे जीवन में हर दिन आते रहते हैं। ये संसार में कोई शांति नहीं है। जो व्यक्ति सोचता है कि मैं सुखी हूं वो तो बहुत दुर्भाग्यशाली है, ऐसे शास्त्र कहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति तो वो है जो समझ लेता है कि मैं दुखी हूं, लेकिन और भी बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में आता है समस्याओं का समाधान करने के लिए। समस्याएं तो सबको होते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान कम है वो अपने समस्याओं का समाधान करने के लिए कोई शराब की दुकान में जाता है, कोई सिनेमा में जाता है, कोई चोरी डाका कोई बैंक में डाका डालता है। लेकिन जो असली में बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो भक्तों के संग में आते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का शरण लेने से हमारे सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हम सोचते हैं कि अगर हमें पैसा मिल जाए, मान प्रतिष्ठा मिल जाए, गाड़ी बंगला मिल जाए, तो ये हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी समझाया करते थे कि देखो आपका जो पैसा है वो एक शून्य के बराबर है, आपका जो घर है वो भी एक शून्य के बराबर है, आपकी जो मान प्रतिष्ठा है वो एक शून्य के बराबर है, आपके जो विश्वविद्यालय के डिग्री सर्टिफिकेट हैं वो भी एक शून्य के बराबर हैं, आपकी सारी संपत्ति, दुनिया की सब कुछ, सारी चीजें एक के बाद एक शून्य। अब बताइए अगर आप एक के बाद एक 10 शून्य लगाएं तो कितना हो जाएगा उसका मूल्य? शून्य ही रहेगा। कितने भी शून्य क्यों ना रहें, लेकिन वो शून्य ही होगा। लेकिन अगर उस शून्य के सामने आपने एक एक नंबर रख दिया तो क्या होगा? एक नंबर के बाद जब शून्य आएगा, एक दो तीन चार, तो वो नंबर दस गुणों से बढ़ता जाएगा। दस, सौ, हजार, दस हजार, एक लाख, दस लाख, एक करोड़ इत्यादि। इसका मतलब है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। ये भौतिक चीजें जो हमारे पास हैं, जिनके पीछे सारी दुनिया पागल हो चुकी है, वो शून्य के बराबर है, और भगवान कृष्ण वो एक है, एक नंबर, हर चीज में एक नंबर है वो। तो वो एक जब हमारे जीवन में हम स्वीकार करते हैं, भगवान कृष्ण को हमारे जीवन में लाते हैं, तो हमारे सारे जायदाद, हमारा पैसा, धन, शिक्षा, प्रतिष्ठा, सब मूल्यवान हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण को निकाल दीजिए, सब कुछ शून्य। ऐसा क्यों? क्योंकि यही जो चीजें हैं जिनको हम बहुत मूल्यवान समझते हैं, यही हमको जन्म मृत्यु के चक्कर में बार बार खींच के ले जाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम भगवान श्री कृष्ण के शरण में चले आए। भगवान श्री कृष्ण हमारा संरक्षण करेंगे। भगवत गीता के नौवें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर श्लोक बताते हैं, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हे अर्जुन, ये जान लो कि जो व्यक्ति अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, अनन्यास चिंतयन्तो माम, माम मतलब मैं, मेरा, तो हे अर्जुन, जो सतत सदैव मेरा चिंतन करते रहता है और मेरी उपासना में, मेरी सेवा में लगा हुआ रहता है, ये जनः परि उपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां, जो सदैव 24 घंटे मेरे सेवा में लगे हुए रहते हैं श्रद्धा से, तेषां, उनके लिए योग क्षेम वहामि अहम्। योग और क्षेम, ये दो महत्वपूर्ण शब्द होते हैं। योग मतलब हम कोई चीज प्राप्त करना चाहते हैं। हर एक आदमी यहां पर जीवन में इस संघर्ष में लगा हुआ है कि किसी न किसी चीज की प्राप्ति हो। किसी को धन चाहिए, किसी को कोई ऊंचा पद चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को बंगला चाहिए, किसी को प्रतिष्ठा चाहिए। योग, हमें सब चाहिए और, इसको योग कहते हैं। और फिर क्षेम, क्षेम मतलब जो हमारे पास है उन चीजों का संरक्षण करना। अब हमारे पास जब धन आ जाता है तो हम देखते हैं कौन से अच्छे बैंक में रखें, कौन से अच्छे अलमायरा में हम रखें, ताकि इसमें अच्छी चाबी हो, कोई चोर तोड़ ना सके। तो हमारे जो कमाए हुआ पैसा है, योग, उसका क्षेम, उसका संरक्षण करना चाहते हैं। जो हमारी प्रतिष्ठा है समाज में, उसको हम बचाए रखना चाहते हैं। अगर ऐसी कोई घटना हो जिससे हमारा नाम खराब हो जाए, तो हम कितने पैसे खर्च करते हैं हमारे अच्छे नाम को बनाए रखने के लिए। तो यह क्षेम, तो ये जीवन का संघर्ष है, योग और क्षेम, योग क्षेम, योग क्षेम। इसके पीछे सारी दुनिया घूम रही है, सभी लोग चिंतित हैं केवल योग और क्षेम के लिए। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि भगवान भगवत गीता में वचन देते हैं कि योग और क्षेम मैं देखूंगा। हे अर्जुन, व्यक्तिगत रूप से भगवान ये वचन देते हैं, जो मेरी सतत भक्ति में लगे हुए रहते हैं उनकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। वास्तव में कितनी अच्छी बात है, ये श्रद्धा की बात है। देखिए, जंगल में इतने सारे पशु प्राणी हैं, कोई छोटे पशु हैं, कोई बड़े पशु हैं। आपने कभी ऐसे सुना है कि कोई जंगल का हाथी कोई दुकान खोल के बैठा है, कोई दफ्तर में जाता है सर्विस करने के लिए, पैसे कमाने के लिए? नहीं। इतने बड़े बड़े पशु प्राणी हो या छोटे से चींटियां हो, भगवान ने उन सब के लिए पेट की व्यवस्था की है, उनके प्राण की व्यवस्था की है, तो फिर इंसान के लिए भगवान क्यों नहीं करेंगे? करेंगे, लेकिन हमें यह श्रद्धा होनी चाहिए। समस्या यह है कि लोग ज्यादा लोभी हो जाते हैं, जो भगवान उनको देते हैं उससे संतुष्ट नहीं होते, इसलिए अधिक से अधिक संघर्ष करना चाहते हैं और ऐसे उलझ जाते हैं इस योग और क्षेम के चक्र में और खो जाते हैं इस जगत में, इस संसार में। जन्म मृत्यु के चक्कर में बार बार उनको आना पड़ता है केवल इस योग और क्षेम के लिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जान ले कि योग क्षेम करने वाले तो श्री कृष्ण हैं, वो मेरा सब कुछ संभालने वाले हैं, तो मुझे किस बात की चिंता है। एक बार एक भक्त थे, एक ब्राह्मण थे वो, और रोज भगवत गीता का पाठ करते थे। भगवत गीता का पाठ करते करते वो 9वें अध्याय तक पहुंचे और 22वें श्लोक तक आए, इसी श्लोक तक। और इसमें भगवान कह रहे हैं, योग क्षेमम वहामि अहम्, कि मैं स्वयं मेरे भक्तों का योग क्षेम संभाल लूंगा। तो उस ब्राह्मण को लगा कि ये कैसे हो सकता है, मुझे तो नहीं लगता। अभी मैं कितने दिनों, अभी एक दिन से मैं भिक्षा के लिए जा रहा हूं लेकिन मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, तो कहां भगवान मेरा कुछ देख रहे हैं। मैं तो भूखा पड़ा हूं, मेरी पत्नी भी भूखी है, देखो हम कितने गरीब हैं यहां पर, तो कहां गया भगवान का योगक्षेम। तो मुझे नहीं लगता कि भगवान स्वयं आएंगे, अगर करेंगे भी तो अपने दूत को भेज देंगे, उनको स्वयं आने की क्या आवश्यकता है। तो ऐसे विचार से अपने किताब को नीचे रख दिया और बाहर भिक्षा मांगने के लिए चले गए, जैसे उनका रोज का कार्यक्रम था। तो उस दिन भी निराश हो गए, सबका भोजन समाप्त हो गया था, किसी ने उनको भोजन नहीं दिया, और उधर यहां से वहां यहां से वहां भिक्षा मांगते मांगते जा रहे थे। उधर उनके घर में एक अद्भुत घटना हुई। अचानक उनके घर में जब उनकी पत्नी अकेली थी तो बाहर से दरवाजा किसी ने खटखटाया, तो पत्नी के पास, वो इतने गरीब थे कि पहनने के लिए भी अच्छे कपड़े नहीं थे, सब फटे हुए कपड़े, पुराने कपड़े। तो पत्नी ने सोचा कैसे खोल सकती हूं मैं दरवाजा, तो बाहर से सुना कि दो बच्चों का आवाज है, फुलहम आपके पति ने हमें भेजा है तो दरवाजा खोलिए। उन्होंने बहुत सारे खाने के सामग्री, जो पदार्थ जो हैं, वो आपके लिए भेजे हैं। मेरे पति ने भेजे हैं? हाँ हाँ, आप खोलिए दरवाजा। तो ब्राह्मणी ने दरवाजा खोल लिया और देखा कि सामने दो बड़े सुंदर बालक खड़े हैं, एक है सांवला रंग का और दूसरा बड़ा गोरा है, और उन्होंने दो टोकरियां भर के स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन सब लाए हुए हैं, और इसके साथ साथ में तरह तरह के और जो चीजें हैं, जैसे गेहूं है, चावल है, सब्जियां हैं, फल हैं। और पत्नी को आश्चर्य हो गया कि अरे इतना सब कहां से आया। तो आपके पति ने भेजा? मेरे पति ने? और भी आश्चर्य हुआ कि मेरे पति इतने गरीब हैं, रोज भिक्षा में एक रोटी आ जाए तो हम भाग्यशाली समझते हैं अपने आप को, और इतना सब कहां से भेज दिया उन्होंने। हाँ हाँ, आपके पति ने ही भेजा है, और देखो हम जब कह रहे थे कि ये सब उठाना कितना कठिन है, हमारे लिए इतना वजन उठाया नहीं जाएगा, तो उन्होंने बड़े क्रूर रूप से हमें पीठ पे मारा। अच्छा, मेरे पति ने आपको मारा? हाँ, देखो देखो। तो बच्चे ने अपना पीठ दिखाया और वाकई पीठ के ऊपर छड़ी की निशानी थी। तो पत्नी को बड़ा गुस्सा है और भी आश्चर्य हुआ, अरे ये मेरे पति का विचित्र स्वरूप आज तक मैंने नहीं देखा। ठीक है, उन्होंने कहा आओ अंदर आओ। ये बच्चे इतने सुंदर थे कि ये जो महिला है ब्राह्मणी, इनके प्रति बहुत आकर्षित हो गई। तो उनको अंदर बुलाया और कहा कि इन्हीं पदार्थों से मैं तुम्हें जल्दी भोजन पका कर देती हूं, तुम खा के ही चले जाना यहां से। तो बच्चे कहने लगे, नहीं बाबा नहीं, हम तो बहुत डरते हैं, तुम्हारे पति कहीं आ जाए और मारेंगे हमको। डरो नहीं, मैं यहां पर हूं, कुछ नहीं होगा। तो उनको अच्छी तरह से भोजन खिलाकर भेज दिया उस ब्राह्मणी ने। उधर थोड़ी देर के बाद वो ब्राह्मण यहां पर चले आए घर में वापस, निराश, थके हुए। उनका चेहरा गिर गया था। तो आ गया अचानक घर में, देखा कि अरे ये सब क्या चीज है, इतने सारा मेरा घर भर गया इन चीजों से। पत्नी से पूछा, अरे ये सब कहां से आया? तो पत्नी ने कहा, जैसे कि तुमको जानते ही नहीं। अरे क्या मतलब? हाँ तो आजकल आपने बच्चों को मारने का धंधा भी शुरू कर दिया है। अरे क्या बोल रही हो, बच्चों का धंधा, क्या बोल क्या रही हो, पागल तो नहीं हो गई? और फिर जब पत्नी ने बताया कि क्या हो गया, तो उस ब्राह्मण को बहुत आश्चर्य हुआ और पूछा कि कैसे थे वो दो लड़के, उनका वर्णन करो। तो फिर उनके पत्नी ने वर्णन किया कि एक का रंग बड़ा सांवला था और एक छोटी सी बांसुरी थी जो कमर के पट्टे के अंदर उसने रखी हुई थी और मोतियों की माला पहनी हुई थी और गले में एक सुंदर फूलों की माला थी जो उसके घुटनों तक पहुंच रही थी और उसके आंख भी इतने सुंदर और इतने मीठे ढंग से बोल रहा था वो बच्चा, और उसके एक बालों में मोरपंख था, और दूसरा बच्चा वो बड़ा गोरा था लेकिन बाकी जो स्वरूप है बिल्कुल दूसरे बच्चे, पहले बच्चे जैसा। तब ब्राह्मण ने अपने कपाल पे हाथ थाम देता है, अरे अरे कितना मैं मूर्ख हूं, कितना दुर्भाग्यशाली हूं कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण और उनके ज्येष्ठ भाई बंधु बलराम जी मेरे घर में आए और मैं यहां पर नहीं था, और तुमने उनको पहचाना नहीं, वो अपने पत्नी से कहने लगे और फिर वो बेहोश होकर वो गिर पड़े। और जब उन्होंने वो गए, वो समझ गए कि जब उन्होंने योगक्षेम वहां में हमको अपने कलम से काट दिया था, ये भगवान का वचन है। वचन मतलब भगवान के शब्द, वचन मतलब कसम भी होता है। तो भगवान ने यहां वचन दिया है कि मैं मेरे भक्तों की रक्षा करूंगा, योगक्षेम में स्वयं आके देखूंगा। जब इस ब्राह्मण के मन में संशय उत्पन्न हुआ था और उन्होंने काट दिया था, तो ये काटने का मतलब है कि भगवान कृष्ण के पीठ के ऊपर वो छड़ी लग गई थी और वही वो निशानी थी। तो उस समय इस ब्राह्मण को पता चल गया कि भगवान श्री कृष्ण कितने कृपालु हैं, और वाकई भगवान श्री कृष्ण अपने श्रद्धालु भक्तों की रक्षा करते हैं। इस तरह से जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के शरण में आता है, उसका नुकसान कभी नहीं होता, उसका फायदा ही होता है। वो भक्ति के मार्ग में प्रगति करता रहेगा, आनंद के मार्ग में प्रगति करता रहेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने यहां अवतार लिया और इसलिए भगवत गीता का उपदेश उन्होंने अर्जुन को दिया। भगवत गीता का उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं है, हम सबके लिए है। अर्जुन को केवल उन्होंने निमित्त बनाकर ये उपदेश दिया। तो हमें सब ये भगवत गीता के उपदेश को ध्यान से भक्तों के संग में आकर सुनना चाहिए। भगवत गीता बहुत सरल है। भगवत गीता का सार क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सारे धर्मों को तुम त्याग दो, केवल मेरे शरण में आ जाओ और तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। ये भगवत गीता का सार है। भगवत गीता का सार ये नहीं है कि कर्म करते रहो, ऐसे लोगों की गलत धारणा है। लोग सोचते हैं कि भगवत गीता का सार है कि हमें कर्म करते रहना है। नहीं, और कर्म करने भी है तो कैसे करने हैं? कई बार लोग कहते हैं, इस श्लोक का उच्चारण करते हैं, कर्मण्येवाधिकार अस्ते, कि कर्म करने का अधिकार हमें है। पर इसके बाद भगवान क्या कहते हैं? मा फलेषु कदाचन, कर्म करो हे अर्जुन, परंतु कर्मों के फल से आसक्त नहीं होना। इसका मतलब है, अगर हम व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो व्यवसाय का जो नुकसान है या जो प्रॉफिट है, जो मुनाफा है, उससे हमें निराशक्त रहना चाहिए। हर चीज में जीवन में हमें निराशक्त रहना चाहिए। लेकिन ये कठिन है, केवल कर्म करना इतना काफी नहीं है। भगवद गीता में हमें बताया जाता है किस तरह से भगवान श्री कृष्ण के लिए कर्म करना। यज्ञार्थात कर्मण्वन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगह समाचर। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमें उनकी प्रसन्नता के लिए, उनके संतुष्टि के लिए कर्म करने चाहिए, और इस तरह से हम इस कर्म बंधन से, दुख के जीवन से मुक्त हो पाएंगे। ये है भगवद गीता। न कि हम केवल कर्म करते रहें और भगवान की भक्ति नहीं करें। और अंततः ये कर्म करने का उद्देश्य क्या है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाए। यही हमारा शाश्वत संबंध है भगवान के साथ, और इस संबंध को पुनः जागृत करना ये सच्चा धर्म है। तो भगवान ऐसा बोल रहे हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को त्याग दो। अब देखिए कितने आश्चर्य की बात कह रहे हैं भगवान। भगवान ने पहले कहा था ना धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि धर्म की संस्थापना करने के लिए मैं अवतार लेता हूं। तो धर्म के बारे में प्रवचन देने के लिए भगवान आए हैं, भगवद गीता जो कि धार्मिक ग्रंथ है वो बोल रहे हैं, और फिर अंत में अर्जुन को कह रहे हैं धर्म को त्याग दो। अरे ये कैसी बात है, लगता है कि कोई विरोधाभास है। नहीं, कोई विरोधाभास नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन सारे अन्य धर्मों को त्यागो, झूठे धर्मों को त्यागो, केवल सच्चे धर्म को स्वीकार करो, सबसे श्रेष्ठ धर्म को स्वीकार करो। श्रेष्ठ धर्म कौन सा है? माम एकम शरणम व्रज, केवल मेरे शरण में आ जाओ हे अर्जुन, ये धर्म है सच्चा धर्म। ये भगवद गीता का सार है। यहां भगवान श्री कृष्ण विराजे हैं, इनके शरण में हमें जाना है। भगवान कहते हैं कि जो भी हम कुछ करेंगे उनको अर्पण करके हमें करना है, जो भी हम खाएंगे उनको अर्पण करके खाना है, सब कुछ उनके लिए। ये है भगवद गीता। मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। हे अर्जुन मेरा भक्त बनो, सदैव मेरा स्मरण करो, और इसी में तुम्हारी भलाई है। ऐसे तुम मेरे धाम को लौट कर आओगे। तो भगवान के वैकुंठ धाम को वापस लौट के हमें जाना है तो हमें श्री कृष्ण का भक्त बनना चाहिए। अपने जीवन में सच्चा आनंद लाना है तो श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। यहां पर संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है, घर छोड़ने की, व्यवसाय छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, यहां किसी चीज की छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल जोड़ने की आवश्यकता है। अपने हर चीज को भगवान श्री कृष्ण से जोड़ना चाहिए। प्रवचन के पहले थोड़ी देर यहां कीर्तन चल रहा था, आपको कीर्तन में शायद बहुत अच्छा लगा होगा। कीर्तन करते समय आपने अनुभव किया होगा कि आपके संसार के, दुनिया के सारे कष्टों को आप भूल गए। ये है भगवान के नाम का जादू। ये कलयुग में यही धर्म का सार है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। इस कलयुग में एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, और वो है भगवान श्री हरि का नाम, श्री हरि का नाम, श्री हरि का नाम। भगवान हरि का नाम लेंगे तो हमारा जीवन आनंद से भर जाएगा। केवल भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, और भगवान का नाम लेने के लिए हमें कोई कर या टैक्स नहीं देना पड़ता, कोई भी ले सकता है। तो इसलिए कृपया इस नाम संकीर्तन के मार्ग को स्वीकार कीजिए। आजकल तरह तरह के ध्यान की पद्धतियां काम नहीं करेंगी यहां पर, ये कलयुग है। कलयुग में लोगों के का मन जो है इतना विचलित रहता है, कहां से ध्यान हो पाएगा, संभव नहीं है। कलयुग में हमें लोगों के, भक्तों के संग में आकर कीर्तन करना चाहिए। इसको संकीर्तन कहते हैं, सम्यक कीर्तन, परिपूर्ण कीर्तन। तो भक्तों के संग में आकर जब हम भगवान के नाम का गुणगान करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो हमारे सारे जो चिंताएं हैं वो दूर भाग जाते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि जब भगवान के संकीर्तन में हम ताली बजाते हैं तो क्या हो जाता है, हमारे पाप उड़ जाते हैं। जैसे झाड़ के एक पेड़ के नीचे खड़े होकर आप ताली मारेंगे, बजाएंगे, तो सारे जो पक्षी बैठे हुए हैं उस आवाज से वो भाग जाते हैं, उड़ जाते हैं। ठीक उसी तरह से हमारे हृदय में जितने भी आज तक किए हुए पाप हैं, वो केवल भगवान के नाम के उच्चारण करके, ताली बजा के, वो दूर चले जाते हैं। हमारा जीवन शुद्ध, पवित्र और आनंद से भर जाता है। तो कृपया इस कृष्ण भक्ति के मार्ग को स्वीकार कीजिए। ये सुविधा बेलगाम में आप सबके लिए है। यहाँ कोई जाति भेद नहीं, धर्म भेद नहीं, भाषा भेद नहीं, समाज भेद नहीं, कोई भेद नहीं। भक्ति मार्ग में हम सब एक हैं। हम सब भगवान श्री कृष्ण के बच्चे हैं और हम सबको मिलकर उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए। तो आपके कुटुंब के सदस्य, आपके मित्रों को भी अवश्य यहाँ पर लेकर आइएगा। आप सब श्रद्धालु हैं, इसलिए तो आप यहाँ पर आए हैं और आप के लिए खास कार्यक्रम बनाया गया है। आप हर महीने आपके परिश्रम का फल यहाँ भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर रहे हैं। आप सुदामा सेवा कर रहे हैं, जैसे सुदामा जी ने सेवा की थी भगवान कृष्ण की, आप भी अपने अपने यथाशक्ति आप भगवान श्री राधा गोकुल आनंद की सेवा के लिए हर महीने कुछ न कुछ दान दे रहे हैं। तो श्रद्धा रखिए कि भगवान आपके हर एक छोटे से छोटे भावना का प्रतिसाद करेंगे, वो भूलते नहीं हैं भगवान। जब हम भगवान के लिए थोड़ा भी कुछ करते हैं तो भगवान हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। भगवान के लिए कोई सेवा करने से किसी का नुकसान नहीं होता है, बल्कि फायदा ही होता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सथैव भजामि हम। जैसे हम भगवान के सामने आते हैं, भगवान वैसे ही हमारे साथ पेश आते हैं। तो हम आपको बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हर महीने इस राधा गोकुल आनंद के राधा गोकुल आनंद मंदिर के कार्यक्रमों के लिए आप ऐसे दान देते हैं। हम आप सबके बहुत आभारी हैं। लेकिन आपसे यही निवेदन है कि आपकी सेवा केवल यहां तक सीमित न रहे। हमारे धन से हम भगवान की सेवा करते हैं, ये तो उचित है, बहुत आवश्यक है और बहुत अच्छी बात भी है, परंतु साथ साथ हमें आगे भी बढ़ना चाहिए। हमारे मन को, हमारे वाचा को, हमारे तन को भी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, इसलिए ये मंदिर है। तो कृपया इस मंदिर में आइएगा। हर रविवार को यहाँ कार्यक्रम होता है, हर रोज यहाँ पर प्रातः काल में कार्यक्रम होता है, मंगलवार को, शनिवार को कार्यक्रम होता है, अलग अलग उत्सवों के समय यहाँ कार्यक्रम होते रहते हैं। तो आपके मंदिर में ही यहाँ पर आइएगा, इन कार्यक्रमों में भाग लेकर अपना जीवन सफल बनाइए और सुखी बनाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपने इतने शांति से यह प्रवचन सुना, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। और अगर आप में से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हिचकिचाइए मत, आप प्रश्न पूछिएगा, अपने स्थान से ही आप प्रश्न पूछ सकते हैं।
स्वामी जी, प्रश्न ये है कि अक्सर ये कहा जाता है कि गया जी में पितरों का कार्य करने से उनका उद्धार हो जाता है, दोबारा श्राद्ध वगैरह की आवश्यकता नहीं रहती, तो क्या ऐसा शास्त्रों में ऐसा पाया गया है क्या?
हाँ, ये सही है। श्राद्ध की विधि का वर्णन शास्त्रों में है और ऐसा करने से हमारे पितरों का लाभ अवश्य होता है। और गृहस्थ जीवन में ऐसे कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। परंतु हम एक आसान मार्ग भी आपको बतला दें। अब ये श्राद्ध की जो विधि है, ये हमारे जो पुत्र हैं या जो वंशज हैं उनके ऊपर निर्भर है, सही है ना? अगर हमारे कोई सही वंशज नहीं रहे या हमारे वंशज श्राद्ध करना भूल जाएं या जानबूझकर नहीं करें तो कष्ट है। तो हम कर रहे हैं हमारे पूर्वजों के लिए, अच्छी बात है, लेकिन हमारे लिए आने वाले कितने पीढ़ियां करेंगे या नहीं करेंगे हम निश्चित रूप से कह नहीं सकते। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के मार्ग को जब हम स्वीकार करते हैं तो इसमें हमें किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, ये भक्ति ही पर्याप्त है, काफी है। हम किसी दूसरे के ऊपर हमारे उद्धार के लिए निर्भर नहीं रहते। प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का भक्त बन जाता है, अपने आप को समर्पित कर देता है भगवान के चरण कमलों में, वो अपना उद्धार तो कर ही लेता है परंतु 7 पीढ़ियां आगे 7 पीढ़ियां पीछे उनका भी उद्धार कर लेता है, और केवल इस जन्म में नहीं पिछले 3 जन्मों में के। मतलब देखिए, केवल भगवान की भक्ति करना यही सर्वश्रेष्ठ श्राद्ध माना जाता है। और जब भक्तों के समाज में ऐसे श्राद्ध मनाया जाता है तो पद्धति ये होती है कि भक्तों को बुलाया जाता है घर में, भक्त लोग कीर्तन करते हैं जो कि सारे वातावरण को, माहौल को पावन कर देता है, फिर थोड़ी कथा होती है और भगवान कृष्ण का प्रसाद का वितरण होता है। और इस तरह से शास्त्र में बताया जाता है कि यह सर्वश्रेष्ठ श्राद्ध है, बहुत सरल है, गया भी जाने की जरूरत नहीं है। परंतु भावना से भक्त क्या करते हैं, अस्थि विसर्जन जो है वो जब वो गंगा जी जाते हैं या वो मायापुर जाते, वृंदावन जाते हैं, जगन्नाथ ऐसे पवित्र स्थानों में जाते हैं तो वहां विसर्जन करके चले आते हैं, यमुना जी में, गंगा जी में, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। लेकिन भगवान की भक्ति करने से हम सर्वश्रेष्ठ श्राद्ध कर रहे हैं, हमारे पूर्वजों के लिए भी और अपने आप के लिए भी हम इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल रहे हैं, सबसे बढ़िया इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। और कोई प्रश्न?
एक प्रश्न स्वामी जी हो रहा है।
हाँ,
हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा।
उत्तर भारत में अक्सर ये देखा जाता है, अपने इधर तो हमने नहीं देखा, सप्ता की बड़ी महिमा बताई जाती है उत्तर भारत में, और देखने में अक्सर ये आता है कि ज्यादा से ज्यादा होड़ रहती है, कोई 5 लाख बोलता है, कोई 10 लाख बोलता है, 20 लाख बोलता है, 50 लाख खर्चने हमको, ऐसे ज्यादा से ज्यादा भव्य पंडाल बनाए जाते हैं, खाने पीने का इंतजाम किया जाता है। तो क्या इतना बड़ा ग्रंथ ये भागवत, क्या सप्ताह में कराना जरूरी है या महत्वपूर्ण है, इसके विषय में आपसे जानना चाहता हूं।
ये अच्छा प्रश्न है। वैसे एक दृष्टि से देखा जाए तो अगर कोई 7 दिन सुन रहा है सप्ताह, नहीं सुनने तो अच्छा है, कम से कम 7 दिन तो सुन रहे हैं। परंतु अगर कोई विद्यार्थी है, वो 7 दिन साल में विद्यालय में जाएगा तो क्या वो काफी है? नहीं, उसे तो रोज जाना होगा, तब जाके उसे ज्ञान मिलेगा और वो अच्छे नंबर लेकर पास हो पाएगा। उसी तरह से केवल हम साल में 7 दिन हम भागवत सुनेंगे, अच्छी बात है, परंतु काफी नहीं है। श्रीमद् भागवत में ही बताया गया है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी। अगर हमारे हृदय में से सारे अभद्र चीजों को नष्ट करना है तो हमें क्या करना चाहिए? नित्यं भागवत सेवया, नित्य भागवत का श्रवण करना चाहिए, रोज, हर रोज, न कि केवल साल में 7 दिन। ये प्रथा इसलिए शुरू हो गई कि परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी जी ने गंगा जी के तट पर 5000 वर्ष पूर्व 7 दिन लगातार श्रीमद् भागवत पहली बार सुनाया था। इसके बाद ये प्रथा आरंभ हो गई तो लोग केवल इस 7 दिन की चीज को देखते हैं और बाकी 355 दिन भागवत को भूल जाते हैं, तो इसमें कोई लाभ नहीं है। यह पहली बात है। दूसरी बात यह है कि जब तक हम रोजाना नहीं करेंगे इसको, केवल ये 7 दिन का फायदा नहीं ज्यादा होगा। समझ लीजिए कि आपको कोई बीमारी है, आपके सामने दो उपाय हैं। एक तो आप यहां किसी स्थानिक डॉक्टर के पास अस्पताल में जाकर अपना इलाज करा सकते हैं, लेकिन समझ लीजिए कि किसी व्यक्ति ने यहां मेडिकल कैंप करा दिया है, जगह जगह से डॉक्टर आए हैं, लेकिन 2 दिन का कैंप है, हजारों मरीजों को देखते हैं वहां पर, वहां जाकर आपका इलाज करा के आ जाते हैं आप। ठीक है, करा दिया, लेकिन वहां किसको समय होता है, हजारों मरीजों को देख रहे हैं, उसमें आप भी एक हैं, तो इलाज ठीक से नहीं हो पाएगा। और वैसे भी अगर आपको 4 दिन बाद कोई तकलीफ हुई, कहां जाएंगे, वो तो कैंप तो बंद हो गया, वो तो चले गए। ठीक उसी तरह से भागवत सप्ताह के समय हम कहीं जाते हैं, किसी को बुलाते हैं भागवत प्रवचन करने के लिए, 7 दिन लगातार हम सुनते हैं, थोड़ा कुछ ग्रहण करते हैं, लेकिन उसके बाद प्रवक्ता चले जाते हैं, हमें कोई प्रश्न होते हैं, जिज्ञासा होती है, कोई मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, कहां से मिले, प्रगति कहां से करें वहां, यह समस्या हो जाती है। और तीसरी बात यह है कि अक्सर यह देखा जाता है कि जो भागवत बोल रहे होते हैं वो अपने आप के लिए बहुत बड़ी रकम मांगते भी हैं। तो शास्त्र में बताया जाता है कि अगर हमें श्रीमद् भागवत सुनना है, जो कि बहुत पावन, एक बहुत पवित्र ग्रंथ है, तो ऐसे व्यक्तियों से नहीं सुनना चाहिए जो कि भागवत का प्रवचन अपने जीविका के लिए कर रहे हैं। हमें ऐसे लोगों से सुनना चाहिए जो कम से कम प्रामाणिक संप्रदाय में आ रहे हैं, और भले वो ज्यादा उन्नतिशील हो या न हो, लेकिन जो पोस्टमैन की तरह भागवत का संदेश हम तक पहुंचा रहे हैं, ये हमें देखना चाहिए। अवैष्णव मुखोद्गीर्णम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्छिष्टम यथापयः। पुराणों में बताया हुआ है कि अवैष्णव मतलब जो सच्चा कृष्ण भक्त नहीं है, उसके मुख से हमें श्रीमद् भागवत या हरि कथा नहीं सुननी चाहिए। श्रवणम न एव कर्तव्यम, श्रवण नहीं करना चाहिए। हालांकि पूतम हरि कथामृतम, हरि कथा अमृत के समान है, पूतम है, सबको पवित्र करने में समर्थ है, परंतु ऐसे अवैष्णव के मुख से हमें नहीं सुनना चाहिए। क्यों? सर्प उच्चिष्ठम यथा पयः, पयः मतलब दूध। जब एक सांप किसी दूध को चख लेता है तो वह दूध बिगड़ जाता है, उसमें जहर आ जाता है, और हालांकि दूध साधारणतः एक पौष्टिक आहार है, परंतु इस समय हम उस दूध को पिएंगे तो वो जहर हमारे अंदर आ जाएगा, नुकसान हो जाएगा फायदा होने के बजाय। तो ठीक उसी तरह से अगर हम किसी से भी भागवत सुनेंगे जो अपने जीवन में भागवत के विधियों को उतारता नहीं हो, तो फिर फायदा होने के बजाय नुकसान हो सकता है। इसलिए अच्छा ये है कि हम रोज भागवत का श्रवण करें, अपने घर में भागवत पढ़ें, भक्तों के संग में आकर भागवत को सुने, नित्यम भागवत सेवया, फिर हमारे भागवत श्रवण की पद्धति जो है वो सफल हो सकती है, सफल सच्चा फल हमको मिल सकता है। और ऐसे भक्तों से अगर हम भागवत सप्ताह सुने उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो आप सबका